रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। जनता के काम को प्राथमिकता देने का प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने जनप्रतिनिधियों को किया निर्देश। अमेरिकी सेना के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम संबंधी समझौते को आगे न बढ़ाने की परराष्ट्र मंत्री डॉ नारायण खड़का ने जताई प्रतिबद्धता। नेपाल किसी भी सैन्य गठबंधन में सहभागी नहीं होगा, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा ने किया साफ। 5 से 12 साल के बीच के बच्चों को लगाई जाने वाली कोरोना की वैक्सीन नेपाल में 91% प्रभावकारी है, स्वास्थ्य सेवा विभाग का कथन। और ईंधन अभाव के कारण श्रीलंका सरकार ने गैर आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों को दी 2 हफ्ते के लिए घर से काम करने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेख बहादुर देववा ने कहा कि व्यावहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। आज कंचनपुर के महेंद्रनगर में सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा सिर्फ औपचारिक और सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक, जीवनोपयोगी और समाज के रूपांतरण में सहयोगी भी होनी चाहिए। इससे पूर्व प्रधानमंत्री देववा ने नेपाली कांग्रेस द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए महेंद्रनगर में आयोजित बधाई एवं शुभकामना ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जनता के काम को प्राथमिकता देने का निर्देश किया था। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमंत्री देववा ने जनप्रतिनिधियों को जनभावना के मुताबिक काम करने का निर्देश किया। परराष्ट्र मंत्री डॉ नारायण खड़का ने अमेरिकी सेना के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम संबंधी सैन्य समझौते प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। आज संयुक्त दरबार में प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति की बैठक में परराष्ट्र मंत्री डॉ खड़का ने ऐसी प्रतिबद्धता जताई। इस बात का जिक्र करते हुए कि एसपीपी से संबंधित सैन्य समझौते प्रस्ताव नेपाल को स्वीकार नहीं है, उन्होंने कहा कि नेपाली सेना और अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श कर नेपाल एसपीपी का सदस्य नहीं है, इस संबंध में अमेरिकी सरकार को पत्राचार किया जाएगा। साथ ही परराष्ट्र मंत्री डॉ खड़का ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा को अमेरिका दौरे का न्यौता आया है और उपयुक्त समय में वे अमेरिका दौरे पर जाएंगे। बैठक में नेपाली सेना के प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा ने साफ किया कि नेपाल किसी भी सैन्य गठबंधन में सहभागी नहीं होगा, ये बताते हुए कि अमेरिका के एक राज्य को नेपाल को प्राकृतिक आपदा में मानवीय सहायता मुहैया कराने के हिसाब से पत्र लिखा गया था। प्रधान सेनापति शर्मा ने कहा कि उक्त पत्र नेपाल सरकार की परराष्ट्र नीति के विपरीत नहीं लिखा गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सैन्य गठबंधन नहीं होगा, ये बात अमेरिकी अधिकारियों को बताई जा चुकी है। प्रतिनिधि सभा की आज की दूसरी बैठक ने सामाजिक सुरक्षा प्रथम संशोधित विधेयक 2079 और तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 पर विचार विमर्श करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक में गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक, नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण एवं समन्वय विधेयक और सामाजिक सुरक्षा विधेयक पेश किया था। इसी तरह बैठक में अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दहाल ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2079 और बीमा विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2079 पेश किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 6 सोमवार दोपहर 1 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने विनियोजन विधेयक 2079 पर विचार विमर्श करने के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकृत किया। बैठक में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव पेश किया था। इससे पूर्व राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 5 रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
श्रम ऐन 2074 को पालना गरौं। श्रमिक आपूर्तिकर्ता र रोजगारदाता सजग बनौं।
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि समाजवाद को सही तरीके से समझने और समझाने की जरूरत है। आज काठमांडू में एमाले की ओर से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन के समापन समारोह में अध्यक्ष ओली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल के संदर्भ में समाजवाद का अर्थ सुखी नेपाली और समृद्ध नेपाल है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अनुशासित होकर जनता की सेवा करने का निर्देश किया। बता दें कि इस सम्मेलन में 20 सूत्रीय संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि जब तक शांति प्रक्रिया निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगी तब तक पांच दलीय गठबंधन कायम ही रहेगा। आज चितवन की भरतपुर महानगरपालिका में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। कार्यक्रम में ऊर्जा सिंचाई तथा जलस्रोत मंत्री पंफा भूषाल ने कहा कि नारायण तटबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में भरतपुर में महत्वपूर्ण कार्यों की शुरूआत की जाएगी। गृहमंत्री बालकृष्ण खां और कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोयराला ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के साथ मुलाकात की। भक्तपुर के बालकोट स्थित ओली के निवास में की गई इस मुलाकात में नागरिकता विधेयक को राजनीतिक सहमति में आगे बढ़ाने के विषय में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी गृहमंत्री के सचिवालय ने दी। बता दें कि इससे पहले भी गृहमंत्री खान नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव और अन्य दलों के साथ भी नागरिकता विधेयक पर विचार विमर्श कर चुके हैं। नेपाल में 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को दी जा रही कोरोना की वैक्सीन की प्रभावकारिता 91% बताई गई है। ये बात स्वास्थ्य सेवा विभाग और नेपाल स्वास्थ्य पत्रकार मंच द्वारा काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में परिवार कल्याण महाशाखा के जनस्वास्थ्य अधिकृत संजय महासेठ ने कही। कार्यक्रम में विभाग के महानिदेशक दीपेंद्र रमान सिंह ने वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने का आग्रह भी किया था। मुस्तांग और म्यागदी को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए मालढूंगा बेनी सड़क खंड को आज से आषाढ़ 32 गति तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दैनिक 4 घंटों के लिए बंद किया जाएगा। ये जानकारी काली गंडकी कॉरिडोर बेनी जॉनसम कोरला सड़क परियोजना प्रमुख जगत प्रजापति ने दी। तापलेजुंग की श्री जंघा गांव पालिका वार्ड नंबर 7 के खेवांग में कल रात आई बाढ़ में एक ही परिवार की दो महिलाओं स्थानीय तुलसा अधिकारी और उनकी बहू की मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए कोशी अंचल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ के कारण इसी वार्ड के 30 परिवार विस्थापित हुए हैं। ये जानकारी वार्ड अध्यक्ष बुद्ध दाहाल ने दी। जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के संक्रमण की आशंका की गई थी उसकी जांच करने पर कुष्ठ रोग की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की प्रवक्ता डॉक्टर संगीता कौशल मिश्रा से मिली जानकारी के मुताबिक टीकू अस्पताल में इलाज करवा रहे एक व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया है। बता दें कि दुबई से आए 26 वर्षीय एक पुरुष को मंकी पॉक्स की आशंका में कल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्वास्थ्य सहायता कक्ष ने जांच के लिए टीकू अस्पताल भेजा था, जहां उन्हें भर्ती करके जांच शुरू की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईंधन की कमी के चलते श्रीलंका की सरकार ने गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को 2 हफ्ते के लिए घर से काम करने की सलाह दी है। इसके साथ ही स्कूलों से भी ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए कहा गया है। श्रीलंका ईंधन आयात करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है। ईंधन की कमी के चलते श्रीलंका में सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित है। सरकार का कहना है कि अगले 2 हफ्ते यात्रा करने वालों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं। श्रीलंका ने पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए भारत से और वित्तीय सहायता की मांग की है। भारत के अलग अलग हिस्सों में सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। बीते तीन दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों में तमाम स्थानों पर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने तेलंगाना और बिहार समेत उत्तर प्रदेश में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। पूर्व मध्य रेलवे ने शुक्रवार शाम बुलेटिन जारी करके बताया कि अब तक 214 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 78 ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने मोहिउद्दीन नगर में जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी और लखीसराय जंक्शन में खड़ी एक ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों ने बलिया जिले में स्टेशन पर खड़ी बलिया सियालदह एक्सप्रेस और बलिया लोकमान्य टर्मिनस एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता के काम को प्राथमिकता देने का प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने जनप्रतिनिधियों को दिया निर्देश। अमेरिकी सेना के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम संबंधी समझौते को आगे न बढ़ाने की परराष्ट्र मंत्री डॉ नारायण खड़का ने जताई प्रतिबद्धता। नेपाल किसी भी सैन्य गठबंधन में सहभागी नहीं होगा, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा ने किया साफ। 5 से 12 साल के बीच के बच्चों को लगाई जाने वाली कोरोना की वैक्सीन नेपाल में 91% प्रभावकारी है, स्वास्थ्य सेवा विभाग का कथन। और ईंधन अभाव के कारण श्रीलंका सरकार ने गैर आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों को दी 2 हफ्ते के लिए घर से काम करने की सलाह। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।